ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम सेकेंड कैंटो चैप्टर 10। भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। टेक्स्ट 8। यो अध्यात्मिकः, ओके लेट मी जस्ट रीड इट सेपरेटली एंड देन वी कैन डू द संधि। यः अध्यात्मिकः अयम् योद्धात्मिकोऽयम् योद्धात्मिकोऽयम् पुरुषः सः असाव सोसाव एवाधिदैविकः सोसावेवाभिदैदिकः सोसाव एवाधिदैविकः। जस तत्रो भयो विच्छेदः जो जास्तत्रो भयो विच्छेदः पुरुषो हि अधिभौतिकः। पुरुषो हि अधिभौतिकः। योद्धात्मिको यम पुरुषः शोषावेवाभिदैविकः जस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो हि अधिभौतिकः। पुरुष हि अधिभौतिकः। योद्धात्मिको अयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः जस्तत्रो भयो विच्छेदः पुरुषो हि अधिभौतिकः। अयम् दिस् पुरुषः पर्सनालिटी सा हि असौ दैट एव आल्सो अधिदैविकः कंट्रोलिंग डेटी या दैट विच तत्र देयर उभया ऑफ बोथ विच्छेदः सेपरेशन पुरुषः पर्सन ही फॉर अधिभौतिकः द विजिबल बॉडी और द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी। Okay, translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. The individual person possessing different instruments of senses is called the adhatmik person. And the individual controlling deity of the senses is called the adhidaivik. The embodiment seen on the eyeballs is called the adhibhautik person. Purport by Srila Prabhupada. I'm sorry, please repeat after me.
The individual person
possessing different instruments of senses is called the adhatmik person. And the individual controlling deity of the senses is called adhidaivik. The embodiment seen on the eyeballs is called the adhibhautik person. Purport by Srila Prabhupada. The supreme controlling samam bonam is the personality of Godhead in His plenary portion as Paramatma or the Supersoul manifestation. In the Bhagavad Gita, it is said, Athava bohunaitena king gyatena tavarjuna vishtabham aham idam kritsnam ekangshena sthito jagat. All the controlling deities like Vishnu, Brahma and Shiva are different manifestations of the Paramatma, feature of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who exhibits Himself in such manners by entering into each and every universe generated from Him. But still, apparently, there are divisions of the controllers and controlled. For example, in the food controlling department, the controller of food is a person made of the same ingredients as the person who is controlled. Similarly, each and every living individual in his material world is controlled by the higher demigods. For example, we have our senses, but the senses are controlled by the superior controlling deities. We cannot see without light, and the supreme controller of light is the sun. The sun god is in the sun planet, and we, the individual human beings, or any other being on this earth, are all controlled by the sun god, as far as our eyes are concerned. Similarly, all the senses we have are controlled by the superior demigods, who are also as much living entities as we are. But one is empowered while the other is controlled. The controlled living entity is called the adhatmik person, and the controller is called the adhidaivik person. All this position in the material world are due to different fruitive activities. Any individual living being can become the sun god or even Brahma or any other god in the upper planetary system by a higher grade of pious work. And similarly, one becomes controlled by the higher demigods by lower grades of fruitive activities. So every individual living entity is subject to the supreme controller, subject to the supreme control of the Paramatma, who puts everyone in different positions of the controller and the controlled. That which distinguishes the controller and controlled, that is, the material body, is called the adhibhautik person. The body is sometimes called Purusha, as confirmed in the Vedas in the following hymn, Sa ba esha purushanna rasamayaha. The body is called the Anna Rasa embodiment. The body depends on food. The living entity which is embodied does not eat anything. However, because the owner is spirit in essence, the material body requires replacement of matter for the wearing and tear of the material body, mechanical body. Therefore, the distinction between the individual living entity And controlling plenary deities is in the Annarasamaya body. The sun may have a gigantic body and the man may have a smaller body, but all these visible bodies are made of matter. Nonetheless, the sun god and the individual person who are related to the controller and control, who are related as controller and controlled, are the same spiritual parts and parcels of the Supreme Being. And it is the Supreme Being who places different parts and parcels in different positions. And thus, the conclusion is that the Supreme Person is the shelter of all. Yodhatmiko ayam purushaha so sab evadhi daivikam daivikaha jastatro bhayo vichedaha purushohi adhibhautikaha. So here is the consideration or discussion about adhiatmik, adhidaivik and adhibhautik. So in simple words, Prabhupada is pointing out the adhiatmik is the individual souls. And then there are adhidaivik. Adhidaivik are the demigods, the devas. The demigods who are controlling different affairs of the material nature. And adhibhautik is the embodied, the material bodies that are seen in the eyeballs. Like with our eyes, what we see is adhibhautik, other living entities. So so the point is, we ourselves are adhatmik. Those who are controlling us, the demigods, they are adhidaivik, adhidaivik, and who we are seeing, the other living entities around us, they are adhibhautik. Then, Prabhupada is pointing out in the purport that there are different types of living entities. They fall generally in two categories. One is the controller and the other is controlled. Come in, Parashuram. Just arrived? Okay. Welcome back. Now I am seeing some new arrival. Hindi class sunne ke liye kon kon aaye the aaj? Keval do, teen, char. Haath uthao na. ताकि हमारा ओके थोड़ा सा हिंदी में भी मैं बोलूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं. वैसे हमारा कंडीशन था क्या उस रोज, अगर हिंदी में क्लास होगा तो हजारों आदमी आएंगे. ठीक है, तो क्लास तो हम जब क्लास शुरू किया था तब देखा कि बहुत कम लोग हिंदी सुनने के लिए आए हैं, काफी लोग अंग्रेजी भाषाभाषी हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि क्लास इंग्लिश में ही दूंगा. तो अब हम ये इंग्लिश और हिंदी मिला के अंग्रेजी में क्लास दूंगा. What happened to the light? Ye ko thai, Aniruddha ko thai? Sleeping. Ki hoyeche? Line e byasto ache. Sharad. Ki koreche? Jol ta ekhon thik hoye geche. Okay, actually the inverter should come in immediately as soon as the current goes on. Huh? To buy a new one. Where did you get the Puratan? Okay, तो इस श्लोक में विचार हो रहा है. इसके पहले क्या हो चुका है? भागवतम का चतुर्श्लोकी हो चुका है. चार श्लोक में जो श्रीमद् भागवत का वर्णन हुआ है, चार श्लोक में जो ब्रह्मा जी को भगवान खुद चार श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत दिए थे, उसका ही हरे कृष्ण उसका वर्णन हुआ है चतुर्श्लोकी. तो चतुर्श्लोकी भागवतम के वर्णन के पश्चात ये दसम अध्याय में वर्णन हो रहा है भागवत का जो दस लक्षण है. श्रीमद् भागवत का दस लक्षण जो है उसका वर्णन हुआ है पहला श्लोक में. ये दस जो लक्षण है उसका वर्णन, और तीन से सात श्लोक में उस लक्षण का थोड़ा विस्तृत वर्णन हुआ है. भागवतम का दस लक्षण क्या है, किसको पता है? Oh, very good. Kartik, your hand went up first. What are the 10 lakshans of Srimad Bhagavatam? Thoda dhire dhire jor se bolo. Tum sharma rahe ho. Okay. Boldly. Atra. Very good. तो उसके पश्चात वर्णन हुआ है स्थानम का मतलब क्या है. स्थानम किसको पता है? ओके पारुल. हाँ बताओ हिंदी में.
अगर भगवान के नियमों का पालन करते
हैं तो हम सारे बस उसके पश्चात पोषणम में आ रहा है. स्थानम क्या करना, जहां भी हो किसी भी लोक में हो. स्थानम का मतलब है प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेट्स. इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? 14 लोक हैं. चतुर्दश भुवन, 14 भुवन है एक एक ब्रह्मांड. इसमें से सात है ऊपर का और बाकी सात है नीचे का. बल्कि जहां भी हम हो हर जीव का कर्तव्य है भगवान के नियंत्रण में रहना, भगवान के अधीन होकर रहना, और भगवान को महिमा कीर्तन करते रहना. मतलब अगर अगर हम किसी को मान लिया है, किसी को हम प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो हम क्या करते हैं? प्रभु को सेवा करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं. तो स्थानम का मतलब है हम जहां भी जिसी लोक में भी हो हमारा कर्तव्य है कि भगवान के नियंत्रण में रहकर रहना. और तब क्या होता है, जब हम भगवान का नियंत्रण में रहते हैं तब पोषणम, हम भगवान का नियंत्रण में रहते हैं तो भगवान हमें पालन करते हैं, भगवान हमें रक्षा करते हैं. तो इसके कारण भगवान का और एक नाम है वैकुंठ. भगवान के शरण लेने से सारे कुंठा, कुंठा शब्द हिंदी में आता है. अच्छा, कुंठा का मतलब क्या है? ग्लानी, मुसीबत, दिक्कत, सारे मुसीबतें दूर हो जाता है. इसलिए भगवान है विगत कुंठा, जिसके शरण लेने से सारे कुंठा, सारे तकलीफ, सारे कठिनाई दूर हो जाता है. हो रहा है भगवान का शरण लेने से? हो रहा है. बहुत अच्छा, तो आप सब वैकुंठ में चले गए हैं. विगत कुंठा इति वैकुंठ, जहां रहने से कुंठा नहीं रहता है और जिसके शरण में रहने से कुंठा नहीं रहता वो भी वैकुंठ है. इसलिए भगवान का और एक, भगवान का कितने सारे नाम है अपने गुण के मुताबिक, और एक नाम ऐसे है वैकुंठ. तो भगवान का, तो तब भगवान पोषणम, भगवान हमें पोषण पालन करते हैं. हम बोलते हैं ना, हिंदी में भी आता है पालन पोषण, तो ये है पोषण. स्थान अत्र सर्ग. अच्छा, इसके पहले और एक ये आ गया था सर्ग. ये हाँ, पहला जो था वो है अत्र सर्ग और विसर्ग. सर्ग का मतलब क्या है? सर्ग का मतलब है सृष्टि. ओके मनिका, बताओ. आज मैं सोचा था कि क्लास हिंदी में हो रहा है.
प्राथमिक सृष्टि.
ओके, प्राथमिक सृष्टि. सो एंड दोज हु आर नॉन हिंदी स्पीकिंग, फॉर देम आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट आई एम जस्ट रिवाइविंग, रीइटरेटिंग. सो यू ऑल ऑलरेडी नो दैट, वी हैव एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड अबाउट इट. So use this opportunity as an opportunity to learn Hindi, to brush up your Hindi. Arti, you're smiling, I can see. Helping to learn Hindi? No? Okay. Sometimes we have to give a crash course. Just. Okay, so... atra sarga, then visarga. What is visarga? Visarga ka meaning hai? Haan, prathmik ye hai sarga, aur visarga ka matlab hai? Upa shrishti. Jo Brahma ji ne karte hai. Kaise Brahma ji ne? Aise upa shrishti. Ye secondary, मुख्य और गौण, गौण सृष्टि कह सकते हैं. ब्रह्मा जी कैसे करते हैं? जो जीव इस भौतिक जगत में आता है, ब्रह्मा जी उसको शरीर प्रदान करते हैं. एक एक उनके स्थिति के अनुसार शरीर प्रदान करते हैं. तो ये इसे विसर्ग कहा जाता है. सो अत्र सर्ग विसर्ग, देन उसके पश्चात आ रहे हैं स्थानम, उसके पश्चात पोषणम और ऊतया. ऊतया क्या है? ऊतया का मतलब ऊतया कर्म वासना, काम करने का जो इच्छा, मतलब कर्म फल भोग करने का जो प्रवृत्ति है वो है ऊतया, कर्म फल भोग. हम चाहते हैं ना, जो कुछ करते हैं हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट, उसका फल हम भोग करेंगे. जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई खत्म होने के पश्चात वो क्या मांगते हैं? एक बहुत बढ़िया नौकरी मिले और बहुत रुपया कमाए. तो ये जो कर्म किया था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर, उसका अब फल भोगने का इच्छा हो रहा है. और स्कूल में रहते हुए भी क्या होता है, जब साल के बाद जब इम्तिहान होता है, तब अगर रिजल्ट खराब हो गया तो मन में बहुत कष्ट होता है. मैं इतना कोशिश किया था, सारा साल भर इतना पढ़ाई किया, बल्कि देखो अंत में क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ. तो ऐसे हम कर्म फल भोगने का इच्छा करते हैं, और ऐसे कर्म किए बिना भी फल भोगने का इच्छा करते हैं. सारा साल पढ़ाई नहीं किया, बल्कि वो चाहता है कि फर्स्ट हो जाएंगे क्लास में, होता है ना ऐसा. बल्कि हमारा जो कुछ हो रहा है वो कर्म के फल के अनुसार ही हो रहा है. prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasaha. Prakriti mein sab kuch gun aur karma ke anusar ho raha. तो भागवतम का ये तो पांच हमको मिला है, है ना, सर्ग विसर्ग स्थान पोषणम उतय और उसके पश्चात मन्वंतर. मन्वंतर का मतलब, मन्वंतर का मतलब क्या होता है? मन्वंतर धर्म सद्धर्म, मन्वंतरानी सद्धर्म. मन्वंतर मनु आकर क्या देते हैं? एक एक ब्रह्मा के एक दिन में कितना मनु आता है? 14 मनु आता है. ब्रह्मा का एक एक दिन है 1000 चतुर्युग तक, और उस 1000 चतुर्युग में 14 मनु आता है. इसलिए एक एक मनु का स्थिति है 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग. और ये मनु ने आकर क्या देते हैं? मनु धर्म का नीति प्रदान करते हैं, कैसे आचरण करना चाहिए. और मन्वंतर, उसके पश्चात ईशानु कथा. ईशानु कथा, ईश कौन है? ईश्वर, ईश्वर भगवान. भगवान का अनुकथा, भगवान का लीलाए का जो वर्णन है उसे ईशानु कथा. तो भागवतम का मुख्य विषय है ईशानु कथा. भागवतम में क्या हो रहा है? भागवतम में सृष्टि आदि के वर्णन के पश्चात भगवान के बारे में वर्णन हो रहा है. जैसे भगवान का वर्णन कैसे? भगवान का भक्त के साथ भगवान का जो लीला, उसका आख्यान. जैसे प्रह्लाद महाराज के आख्यान के माध्यम नृसिंह देव के रूप में भगवान का आविर्भाव का वर्णन हुआ है. ध्रुव महाराज का चरित्र का वर्णन हुआ है. ऐसे वराहदेव कूर्मदेव रूप में, मीन के रूप में भगवान के भिन्न भिन्न अवतार, इस परशुराम, श्री रामचंद्र, कृष्ण, अंत में दशम स्कंध में जाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है श्रीमद् भागवत में. दशम और एकादश स्कंध में और द्वादश कांड में भगवान का भिन्न भिन्न अवतार का आविर्भाव का वर्णन मुख्यतः हुआ है. तो ऐसे श्रीमद् ईशानु कथा, ईशानु कथा के पश्चात निरोधा. निरोधा का मतलब निरोध, वाइंडिंग अप ऑफ द कॉस्मिक क्रिएशन. वाइंडिंग अप, निरोध. वाइंडिंग अप का हिंदी क्या है? वाइंडिंग अप का मतलब सृष्टि का नाश. अच्छा ठीक है, जब नाश होता है तो क्या होता है? सब फिर से भगवान के पास वापस चला जाता है. इस भौतिक जगत का दो स्थिति है, व्यक्त और अव्यक्त, मतलब प्रकाश और अप्रकाश. प्रकाश कब होता है ये भौतिक जगत? जब भगवान इस भौतिक जगत के प्रति दृष्टिपात करते हैं. महाविष्णु जब प्रकृति के ओर देखते हैं तो ये जगत प्रकाशमान होता है या व्यक्त होता है या प्रकट होता है. कैसे प्रकट होता है? जैसे हम देखते हैं ये जगत क्या क्यों प्रकट है? हम हैं इसलिए जगत हमारे लिए है. जब हम नहीं रहेंगे तो ये जगत हमारे लिए रहेगा? मृत्यु के पश्चात क्या होगा? ये जगत हमारे लिए नहीं रहता है, जगत रहता है पर हम हमारे लिए जगत नहीं रहता है। तो ऐसे अगर सब जीव को यहां से निकाल दिया गया तो ये जगत रहेगा। इस जगत को अगर कोई देखने वाला नहीं है तो उस इस जगत का प्रकाश होगा नहीं। हमारे हम हैं, हम देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इस जगत का प्रकाश है। जब हम चले जाएंगे बस जगत अव्यक्त हो जाएगा, जब कोई नहीं रहेगा। तो ये हम आते हैं क्यों, कैसे इस भौतिक जगत में, भगवान के दृष्टिपात के माध्यम हम इस भौतिक जगत में आते हैं। और जब भगवान अपना दृष्टि को संवरण कर लेते हैं, जब मिटा ले, विड्रॉ हटा लेते हैं, संवरण भी आता है। ओके, जब भगवान अपना दृष्टि हटा लेते हैं तो इस भौतिक जगत फिर से अप्रकट हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। तो जब अव्यक्त होना का ही मतलब है नाश, नाश हो जाना, ध्वंस हो जाना। बल्कि ध्वंस कैसे होता है, सब जीव फिर से भगवान के पास वापस चला जाता है। तो ध्वंस कैसे होता है, जीव मरना नहीं चाहता है तो उसको यहां से हटाने का जब जरूरत होता है तो ये कार्य शिव जी ने करते हैं। किसी रूप में इस कार्य का संहार कार्य संपादन होता है। एक तो शेषनाग के मुंह से जब आग निकलता है तो वो एक प्रकार का विनाश है। एक तो होता है प्रलय के कारण, जब पानी से भर जाता है सब सारे जगह, प्रलयोपयोधी जले धृतवान सी वेदान। जब प्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो गया था तब भगवान वेद की रक्षा करने के लिए केशव धृता मीन शरीरा, मछली के रूप में भगवान तब अवतरण किए थे। ऐसे भगवान किसी किसी रूप में अवतीर्ण होते हैं, रक्षा करते हैं सृष्टि को। बल्कि अंत में सृष्टि एकदम पूरा नष्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, भगवान जब अपने दृष्टि को फिरा लेते हैं। तो ऐसे निरोध और मुक्ति का मतलब क्या है, इसके पश्चात है मुक्ति। मुक्ति का संज्ञा क्या हुआ है, मुक्ति हित्वा अन्नथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्न जो रूप है उसको त्याग करके स्वरूप में स्थित होना। अन्नथा रूपम क्या है, ये जो शरीर है अन्नथा रूपम, मन है अन्नथा रूपम, ये स्थूल शरीर, ये पंचभूतात्मक स्थूल शरीर और मन बुद्धि अहंकार के द्वारा जो बना हुआ सूक्ष्म शरीर, ये हम सोचते हैं ये हमारा स्वरूप है ना। आप कौन हैं हम अगर पूछते हैं तो उसका जवाब क्या होता है, मोहन रूपा तुम कौन हो, आत्मा है। बहुत अच्छा, बल्कि जब ऑफिस में जाते हो तब किसी ने जब पूछता है क्या बोलते हो, तो तुम कौन हो, तुम बोलते हो मैं मोहन, और ये अपना नाम बताता है ना। और जब कुछ करते हो तो ये शरीर को स्वरूप समझ रहे हो। ऐसे हर व्यक्ति ऐसा ही करता है, ऐसे साधारण स्थिति में हम अपना शरीर के माध्यम हमारा परिचय प्राप्त होते हैं। बल्कि मुक्ति का अर्थ क्या है, मुक्ति का अर्थ है कि ये दूसरा अन्नथा रूपम जो अंदर जो परिचय है इससे मुक्त होकर, इससे अलग होकर अपना स्वरूप में स्थित होना। और हमारा स्वरूप में हम कौन है? अन्यथ रूपों में हम क्या सोचते हैं? अन्य रूप में हम सोचते हैं मैं हूं भोक्ता, मैं हूं भोग करने वाला, मैं हूं ईश्वर, मैं सारे संसार के मालिक हूं, ऐसे सोचते हैं ना हर आदमी इस भौतिक जगत में। बल्कि ये जो परिचय है इसको त्याग कर जब हम अपना स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप में जब हम अपने स्थिति प्राप्त होते हैं वही है मुक्ति। और अपना आत्मिक स्वरूप में हम क्या है, कौन है? आत्मिक स्वरूप में यस, वेरी गुड। जीव का स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है। मैं हूं दास तुम्हारा, है ना? भगवान के पास हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, मैं हूं दास तुम्हारा, मैं आपका दास हूं, मुझे चाकर राखो जी। भगवान आप मुझे आपका नौकर बना दीजिए। तो ये जब हम भगवान का नौकर बन जाते हैं तभी हम मुक्त हो जाते हैं, स्वरूपेन व्यवस्थिति। और उसकी मुक्ति के पश्चात जो लास्ट जो लक्षण है वो क्या है? आश्रय। सबके आश्रय कौन है? परम आश्रय कौन है? सर्व कारण के कारण कौन है? परमेश्वर भगवान। तो ऐसे भगवत श्रीमद् भागवत में दश प्रकार के लक्षण का वर्णन हुआ है। और अब वर्णन हो रहा है कि ये पुरुष इस जगत में तीन प्रकार के होते हैं, इस भौतिक जगत में अधि आत्मिक, अधि दैविक, अधि भौतिक। और इस प्रकार से तीन प्रकार क्लेश भी होता है, त्रिताप। तीन प्रकार के क्लेश क्या है? वो भी अधि आत्मिक, अधि दैविक, अधि भौतिक। अधि आत्मिक क्लेश क्या है? अपना मन और शरीर के द्वारा जो क्लेश, जो कष्ट, शरीर में कष्ट हो रहा है, बीमारी हो गया है, कष्ट हो रहा है, रुपया खो गया है, मन का कष्ट हो रहा है, तो ये सारे है आधि आत्मिक, अपना मन अपना शरीर से प्राप्त हुआ जो क्लेश। क्लेश का मतलब कष्ट, दुख होता है ना कभी कभी, यह है आधि आत्मिक क्लेश। और अधि भौतिक कौन है? भौतिक, अधि भौतिक जिसको हम देखते हैं आंखों के द्वारा, जो हम देख रहे हैं वो है अधि भौतिक। अन्य जीवो जो हमारे चारों ओर है उन्होंने कभी कभी क्लेश देता है, कष्ट देता है। मैं बहुत सुंदर रूप से, बहुत अच्छा ढंग से, बहुत मजाक कर रहा था, बल्कि एक डाकू आके हमारा सब कुछ लूट के चला गया। हम सब खो गए। ये कौन सी क्लेश है? आधि भौतिक। बहुत अच्छा ढंग से था, एक मच्छर आकर काट दिया। और उसके कारण जब मच्छर काट रहा था कष्ट हुआ था, और उसके पश्चात मलेरिया हो गया। तो ये जो है, ये है आधि भौतिक। तो दूसरे जीवों ने, दूसरे शरीर धारण किए हुए व्यक्ति जब हमें कष्ट देता है वो है आधि भौतिक। और ऐसे और कोई है जो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, पर वो है और वो हमें नियंत्रण कर रहे हैं, आधि
Daivik. देवता,
जैसे हम, उन्होंने हमारा इंद्रिय को देखभाल कर रहे हैं, इंद्रिय को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं. जैसे प्रभुपाद एक दृष्टांत दिया कि हमारे इंद्रिय के द्वारा हम केवल केवल इंद्रिय के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको कोई कंट्रोलर आदि दैविक या देवता है. जैसे हमारे आंखें हैं पर हम क्या देख सकते हैं, आंख देखने के लिए लाइट का जरूरत होता है, रोशनी का जरूरत होता है. तो रोशनी कहां से आता है, सूरज देव से. तो सूरज देव है हमारे आंखें की कंट्रोलिंग डेटी. तो वैसे हमारे हम जैसे पपेटियर, पपेटियर पुतली नचाने वाला, अच्छा जो नचाता है, एक तो है काठ पपेटियर जो नचाता है, पपेट है काठ पुतली, और पपेटियर को नचा जो वो काठ पुतली को नचाता है. तो वैसे देवताओं ने क्या कर रहे हैं, हमको नचा रहे हैं. देवताओं बोलो हाथ उठाओ, हम हाथ उठाओ. ऐसे हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, बल्कि असल में प्रकृति क्रियमानानि गुणाई कर्माणि सर्वशः. जैसे हम कार्य करते हैं उसका उसका कर्म का फल मिलता है, और गुण के द्वारा उसको फल दिया जाता है. गुण गुण के माध्यम उसका फल का फल प्राप्ति होता है कर्म का, और गुण के माध्यम ही फल का भोगना होता है. तो ये गुण को कौन नियंत्रण कर रहा है, तीन गुण गुणों के द्वारा हमें कौन नियंत्रण कर रहा है, देवताओं ने. गुण गुण शब्द का और एक अर्थ भी होता है, पुतली को किस कैसे नचाता है, सूता के द्वारा, और गुण का मतलब है रस्सी. ये हमको भी नचा रहे हैं कैसे, इस गुणों के द्वारा. तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण. तो इन तीन गुण का नियंत्रण कौन कर रहे हैं, सत्व गुण को नियंत्रण कर रहा है विष्णु, रजोगुण को नियंत्रण कर रहा है ब्रह्मा जी, और तमोगुण का नियंत्रण कर रहा है शिव जी. इस गुण के द्वारा हमारा नियंत्रण हो रहा है. तो वैसे रजोगुण के द्वारा सृष्टि हो रहा है, सत्वगुण के द्वारा पालन हो रहा है, और तमोगुण के द्वारा विनाश हो रहा है. तो हमारा सृष्टि हो रहा है, हम स्थिति हो रहा है, और विनाश हो रहा है. तो ऐसे मुख्य अधिदेवता हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, और उसके पश्चात है देवताओं, जैसे चंद्र, सूर्य, वरुण, पवन, गणेश, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल हेड्स है. जैसे अग्नि डिपार्टमेंट का हेड कौन है, फायर डिपार्टमेंट अग्निदेव, पानी का वरुण देव, वायु का पवन देव, सूरज का सूर्य देव या विवश्वान, चंद्र का चंद्रदेव या सोमदेव. एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड कौन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट लक्ष्मी. ऐसे सारे देव देवियां ने इस भौतिक जगत का सारे कार्य का, ब्रह्मांड का, एक एक ब्रह्मांड का कार्य का नियंत्रण कर रहे हैं, और हम लोग अपने कर्म के अनुसार उसका फल भोग रहे हैं. ऐसा नहीं कि सरस्वती के पास पूछने से ही सरस्वती हमें पास करवा देंगे, ऐसा होता ना. बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा करता है स्कूल में, और प्रार्थना करता है अच्छा से पास करवा दो. बल्कि अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो सरस्वती पास कराएंगे तो हमारे तरफ से हमें कर्म करना होगा और उसका फल उन्होंने दे रहे हैं कर्म के अनुसार और गुण के अनुसार। और बल्कि चरम फल का प्राप्ति तब होता है जब हम भगवान के शरण लेते हैं, क्योंकि भगवान है परम ईश्वर, एकदम सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। और बाकी जो कुछ कंट्रोलर्स हैं देव देवियों ने, वो भगवान के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, उनको खुद कुछ करने का ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है। हाँ, जैसे आप जब बैंक में जाते हैं तो कैशियर के पास जाकर आपकी चेक डालते हैं, चेक देते हैं। आपका अकाउंट में अगर रुपया है तभी कैशियर आपको चेक दे सकता है, पास करवा सकता है। अकाउंट में रुपया नहीं होने से वो क्या करेगा। बल्कि आप अगर मैनेजर के पास गया और थोड़ा सा रुपया लोन मांगा तब मैनेजर ग्रांट कर सकता है। बल्कि कैसे ग्रांट करता है मैनेजर, वो कोलैटरल देखता है कि आपका ठीक है मैं दे रहा हूं, बल्कि उसको वापस करने का कोई हिम्मत है, वापस करने का संभावना है। वो देखते हैं, हाँ जमीन है और तुमका 5 लाख का जरूरत है, बल्कि जमीन का दाम है 10 लाख, तो जमीन को तुम ये रख दो, जमानत रख दो, क्या बोलते हैं कोलेटरल का हिंदी, तो हिंदी क्या होता है, गिरवे, अच्छा गिरवी, अच्छा तो ये अगर रखा है, गिरवी रखा है तब मैनेजर दे सकते हैं। मैनेजर के खुद ऐसे दे सकते हैं तो मैनेजर का नौकरी चला जाएगा मैनेजर अगर किसी को कोलेटरल बिना ऐसे रुपया दे दिया और अगर रुपया नहीं मिला तब मैनेजर का काफी असुविधा होगा, वो अपना नौकरी शायद खो जाएगा। तो ऐसे जो देव देवी हैं वो खुद कुछ नहीं कर पाता है। बल्कि आप अगर बैंक का चेयरमैन को जानते हैं, बैंक का मालिक को अगर जानते हैं, वो आपका ये है, तो उसको पास अगर आप जाके बोलेंगे कि हमको 20 करोड़ रुपया का जरूरत है, और वो अगर बोलेगा ठीक है ले लो, तो वो बैंक का जो मैनेजर है उसको एक नोट भेज देते हैं, इसको 20 करोड़ रुपया दे दो, तो वो कुछ बैंक मैनेजर तब कुछ कुछ नहीं सोचेंगे, ओ मालिक ने दे दिया है बस चलो। तो बुद्धिमान का कार्य क्या होगा, मालिक के साथ संपर्क जोड़ना। मालिक के साथ संपर्क जोड़ने से कोलेटरल का, गिरवी का जरूरत नहीं होता है, अपना बैंक अकाउंट का भी जरूरत नहीं होता है। और अगर वो मालिक ऐसा निकल गया कि वो मालिक जो है बैंक का वो आपका पिताजी है तब क्या होगा, तब तो और कोई भी चिंता नहीं रहेगा। तो असल में इस भौतिक जगत का जो स्थिति है, देव देवियों ने जो कुछ कर रहे हैं अपने खुद कुछ करने का उसका ये नहीं है, क्षमता नहीं है। देव देवियों ने भगवान का निर्देशन के अनुसार ही केवल कुछ फल प्रदान कर सकते हैं, बर दे सकते हैं या फल प्रदान कर सकते हैं। ऐसे जैसे आपका पॉकेट में रुपया है तो आप कुछ खरीद सकते हैं। दुकानदार क्या करता है, आप कोई दुकान में गया, कोई चीज बहुत पसंद आया तो आप दुकानदार को बोलते हैं ये चीज हमको चाहिए। हमको चाहिए बोलने से क्या दुकानदार दे देंगे, शॉपकीपर नहीं देंगे, वो क्या बोलेंगे, इसका दाम है 50 रुपया, और आपका जेब में 50 रुपया है तो झट से आप निकल के दे देते हैं, बस सामान खरीद लेते हैं। बल्कि अगर पैसा नहीं होगा तो दुकानदार क्या बोलेगा, आई एम सॉरी आई कांट,
sell it to you. I can't give it to you. ये दाम है.
आप कभी कभी bargain कर सकते हैं. वो 50 रुपये बहुत ज्यादा है, इसको तो 30 रुपये होना चाहिए. तो दुकानदार अगर बोला ठीक है दो दो 30 रुपये, तो आप 20 रुपये सेव कर लिया. ऐसे उनके साथ बार्गेनिंग चल सकता है. बल्कि कुछ भी अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए मूल्य देना पड़ता है. तो ये है कर्म का फल. कर्म का फल दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस. प्लस है पुण्य, पुण्य करने से रुपया बैंक अकाउंट में जमता है, और पाप करने से उसका हानि होता है. 50,000 रुपया बैंक में है, बल्कि कुछ पाप कर लिया तो क्या होगा, गलत काम कर लिया तो उसको डिडक्ट हो जाएगा. 10,000 डिडक्ट हो गया तो क्या रह गया, 40,000. ऐसे कमते कमते अगर जीरो में आ गए उसके बाद भी ये हो रहा है तो क्या होगा, माइनस होता जाएगा. और इसका फल कहाँ देना होगा, जो जितना माइनस होता है इसका फल जमराज के पास जाकर देना होता है. जमराज बोलेंगे तुम्हारा 20 करोड़ माइनस हो गया, तो जाओ तुम नरक में जाके कुंभी पाक में दंड भोग करो. और ऐसे हमको ये हमारा गलत काम का पेमेंट देना होता है. तो सही विचार क्या है, गलत काम करना चाहिए, कभी नहीं. कौन से काम करना चाहिए, पुण्य का कर्म में सही काम करना चाहिए. और सबसे सही काम क्या है, सबसे सही काम, हाँ लक्ष्मी तुम क्या बोल रही हो, अच्छा सबसे बड़े, बहुत अच्छा, सबसे बड़ा काम है, सबसे सही काम है, सबसे अच्छा काम है भगवान का नौकर बन जाना. हाँ भगवान का शरण लेना, और भगवान का शरण लेकर भगवान के लिए सारे काम करते रहना, तब क्या होगा, तब भगवान हमारा देखभाल करेंगे. ये विचार क्या कठिन विचार है क्या, ये सरल विचार है, ये विचार सही विचार है क्या, सही विचार है. तो इसके अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना अंशुल, क्या करना चाहिए, इसके अनुसार कार्य करना चाहिए, हाँ या ना, सोच रही हूं इतना. तो आपसे क्या हो, क्या करना चाहिए, अच्छा भगवान का नौकर बनना चाहिए, ठीक है. भगवान का नौकर बनने से यूनिफॉर्म पढ़ना होता है. भगवान का नौकर का यूनिफॉर्म क्या है, ये कंठी माला. जैसे इसका मतलब होता है कि हम भगवान का नौकर बन गए हैं, कंठीमाला धारण करना. ये तिलक मतलब ये शरीर जो है ये भगवान का शरीर है, ये मेरा नहीं है. और ये शरीर के से इस शरीर के द्वारा क्या करना चाहिए, भगवान का ही सेवा करना चाहिए. तो ऐसे हम केवल नहीं देखते हैं, भगवान का जो दूत है विष्णु दूत भी देखते हैं. और जब गला में ऐसे तुलसी माला रहता है तो जब अंतिम समय आता है तो विष्णु दूत आ जाता है रिक्लेम करने का. उस देखते हैं, ओ अच्छा इसका गले में कंठी माला है, ये तो हमारा प्रभु का दास है, चलो इसको प्रभु के पास ले जाए. और ये अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, विष्णु दूत की जगह कौन आएगा, जमदूत आएगा. और जमदूत आने से बहुत दिक्कत होगा. तो ये सरल भाव लेकर भगवान को सेवा करते रहना. हरे कृष्णा.
गौर प्रेमानंदे।
कोई प्रश्न है किसी को? ऐसा कभी कभी होता देखा हम लोग कि कंठी माला जिंदगी भर पड़ा हुआ है, बल्कि मृत्यु के समय कंठी माला निकल गया है। और तुलसी का महिमा ऐसा ही है कि तुलसी के साथ संजोग रहने से उसका फल मिलता है। भगवान का ये जो कानून है, भगवान का जो ये जो अरेंजमेंट है, इसका फल ऐसा ही इतना ही सुंदर है। चाहे उस पापी होते हुए भी, उस रोज मैं बोला था जमराज पापी था, जमदूत ने उसको लेके आया, लेने के लिए आया, मृत्यु होने वाला था, एक सांड आकर उसको मार के उसका मार डालेगा, मृत्यु होगा उसको। बल्कि जब उसको ऐसा शरीर छोड़ने का ऐसा हुआ, एक सांड आया, बैल, सांड क्या बोलते हैं, बैल, एक बैल आके उसको क्या बोलते हैं, गोड़ आक्रमण किया, ठीक है। और उसका देहांत हुआ, बल्कि जब ही देहांत हुआ, शरीर से निकलने वाला था, विष्णुदूत आ गए और जमदूत ने सोचा ये कैसे हुआ, ये तो इतना पापी था, हम लोग तो इसको लेने के लिए आया था, जमराज ने हमको भेजे हैं, तो ऐसे क्यों हो गया। तो जमराज के पास जाकर पूछा, अजामिल तो आपका नारायण का नाम लिया, तो आप बोले थे जब कोई नारायण का नाम लेंगे और यह तुलसी माला रहेगा या तिलक रहेगा तो उसके पास मत जाने के लिए आप मना कर दिए हैं, बल्कि इसको तो ना तो था कंठी माला, ना तो ये था, ना तो वो नारायण का नाम लिया अंतिम समय में, तो इसको कैसे विष्णुदूत आ गया। तो जमराज ने बताया, जब बैल ने जब आक्रमण किया था उसको और शरीर छोड़ते समय वहां एक तुलसी का पौधे था, उसके साथ तुलसी का पत्ता था, उसके साथ संयोग के वश तुलसी के संयोग में देहांत होने के कारण वो सारे पाप से मुक्त हो गए। एक तुलसी के साथ संयोग रहने के कारण सारे पाप से मुक्त हो गए शरीर छोड़ते समय, और तब विष्णुदूत आ गए। तो देखो तुलसी का महिमा कैसा है। अगर तुलसी के मृत्यु के समय तुलसी के साथ पत्ता का भी संयोग हुआ तो ऐसा फल मिलता है। तो तुलसी के माला जिंदगी भर अगर पहने हुए हो तो उसका फल कैसा होगा। ये भगवान का कृपा है। एक बहुत ऊंचा मकान है, उसमें एक लिफ्ट है, तुम अगर लिफ्ट में घुस जाओ तो चाहे तुम कोई भी हो, लिफ्ट तो तुमको ऊपर ले जाएगा, है ना, ये अरेंजमेंट है लिफ्ट। तो ये भगवान का भी वैसे अरेंजमेंट है, जैसे तुलसी, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का मंदिर, गंगा, यमुना, मृत्यु के पश्चात अगर गंगा के साथ संयोग हो जाता है सारे पाप से मुक्ति हो जाता है। हरे कृष्ण। आज हम हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हैं।